मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं प्री एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे इसी विषय पर बात करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा यह मानना है और आप भी मानते होंगे कि चूंकि एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आते चले जा रहे हैं, इसलिए इस तरह के टॉपिक्स का वजन महत्व लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पिछले सप्ताह मैंने कुछ घटनाओं के बारे में चर्चा की थी, मुझे लगा कि नहीं, इन घटनाओं पर चर्चा कर लेनी चाहिए, अदरवाइज ये बहुत पुरानी पड़ जाएंगी। तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं थी उन पर मैं बात कर चुका हूं, आगे भी जब कभी इस तरह का अवसर आएगा तो इस तरह के काम हम कर लिया करेंगे। लेकिन आप विश्वास रखें कि क्वेश्चन सॉल्व करने के जितने भी तरीके हो सकते हैं उन सब पर मैं बात करके ही रहूंगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपने इन्हें ध्यान से सुना, और केवल सुना ही नहीं बल्कि अपने प्रैक्टिस में भी लाया, तो विश्वास मानिए कि आप चमत्कारिक रूप से एग्जामिनेशन हॉल में प्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आएंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कुछ दिनों पहले मैं शाश्वत अग्रवाल से बात कर रहा था, हमारे स्टूडेंट रहे हैं, ऑल इंडिया 121 उनकी रैंक रही है, और यह बातचीत पूरा का पूरा हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, FEIS के यूट्यूब चैनल पर, आप चाहें तो आप उसे पूरा जाकर के देख सकते हैं। मुझे ध्यान आ रहा है कि उन्होंने एक घटना बताई थी कि प्री में जब वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे तो सॉल्व करने का उनका तरीका क्या था। उन्होंने पूरा अपना फॉर्मेट बताया है और मैं चाहूंगा कि कम से कम उस हिस्से को तो आप कई कई बार सुने, और उसमें से जो आपको अपने लिए उपयोगी लगता है उसे आप अपने सिस्टम में ले आएं। लेकिन आपके सिस्टम में ये तभी आएगा जब आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत से मेल्स मिले हैं, अभी तक मैं जो तौर तरीके आपको बताता चला जा रहा हूं स्टूडेंट्स ने उन्हें लागू किया होगा, कुछ में सफलता मिली कुछ में सफलता नहीं मिली, दो ऑप्शन पर जाकर के स्टूडेंट अटक जाते हैं और उसमें से अक्सर गलत पर निशान लग जाता है। यह मैं एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर दो तक आप पहुंच गए हैं तो आप निशान लगा ही दीजिए भले ही गलत हो जाए, क्योंकि आप फायदे में रहेंगे, राइट। दूसरी बात कि अभी अगर आप गलत पर निशान लगा रहे हैं तो उसका रीजन यह है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम आपकी चेतना में धंसा नहीं है, आया नहीं है। जब ये पूरा सिस्टम प्रैक्टिस करते करते आपकी चेतना का हिस्सा हो जाएगा तब आप सही पे निशान लगाने लगेंगे। तो प्लीज आप उसे जरूर सुने कि कैसे शाश्वत अग्रवाल ने एग्जामिनेशन हॉल में अपने प्री के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, उसमें दोनों है, जनरल स्टडीज फर्स्ट और जनरल स्टडीज सेकेंड, वे दोनों आपके बहुत काम के होंगे। शाश्वत अग्रवाल ने ही एक जो तरीके की चर्चा की उसका मैं आपको यहां स्मरण कराने जा रहा हूं, हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ ने वो प्रोग्राम देखा हो तो आपके ध्यान में भी होगा, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत से नहीं देखते हैं और इसी बहाने आइए हम इसे दोहरा भी लेंगे, अगर आपने देखा है तो कोई बात नहीं। एक बड़ा विचित्र सा प्रश्न है, ये सेट ए का प्रश्न नंबर 19 है, विचित्र सा प्रश्न। विचित्र सा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी एग्जामिनेशन में आप इस तरह के प्रश्न पढ़ते हैं आपका दिमाग रिएक्ट करता है कि यार ये भी कोई पूछने की बात है, ये भी कोई प्रश्न है, कहीं से भी उठा करके पूछ लेते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये आपके सिलेबस का उस तरह से हिस्सा ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये बड़ा विचित्र सा प्रश्न है, सच पूछे तो आपको इरिटेट कर देने वाला प्रश्न है, कहीं ना कहीं आपको परेशानी में डाल देने वाला प्रश्न भी है। तो अब आप क्या करेंगे, क्या इसे छोड़कर आ जाएंगे? नहीं, अगर आप ठंडे मन से ऐसे प्रश्नों पर विचार करने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो दिमाग है आपको सही उत्तर तक पहुंचा देगा। एग्जैक्ट सही उत्तर तक न भी पहुंचाए तो दो को तो वो डिलीट कर देगा, और यदि दो को आप डिलीट करने में सक्षम रहे तो कहीं ना कहीं आप फायदे में ही रहेंगे, बजाय इसके कि आप उसे छोड़कर चले आए। अब आप देखें कि प्रश्न क्या है, थोड़ा सा उटपटांग सा है ये, मैं खुद स्वीकार करता हूं कि ये उटपटांग सा प्रश्न है, और आपकी जगह अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में रहता तो मैं भी इसको देख करके हड़बड़ा जाता, घबरा जाता, और सच पूछे तो शायद कहीं ना कहीं आलोचना भी करने लगता कि यूपीएससी को क्या हो गया है, कौन इसके पेपर सेट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जब थोड़ी सी मेच्योरिटी आती है तब लगता है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, अगर पूछा गया है तो कोई बात नहीं, हम अपने दिमाग का अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन। जब भी आप इस तरह के प्रश्न पढ़े ना तो मेरी एक सलाह है कि आप बहुत इत्मीनान से पढ़िएगा, वो शुरुआत है किसी भी प्रश्न से आपके मुलाकात की। अगर वहां आप हड़बड़ी से पढ़ेंगे तो प्रश्न को समझने में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी और ये आपके लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि वहां समय का दबाव तो आपके दिमाग पे रहेगा, मैं समझ सकता हूं। लेकिन कोई बात नहीं, प्रश्न को तो कम से कम आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि सारा दारोमदार तो प्रश्न पर ही है। प्रश्न आपकी समझ में आ जाएगा तो ऑप्शन में आप सही उत्तर ढूंढ लेंगे। अगर प्रश्न ही समझ में नहीं आया या गलत समझ में आ गया तो आप सही उत्तर निकालेंगे कैसे? तो प्रश्न को बहुत इत्मीनान से पढ़िए, प्रश्न को पूरा समय दीजिए, हड़बड़ाइए मत। मैं यहां देखिए कि प्रश्न को कैसे समय दे रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन, आप अगर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो कौन के बाद बकायदे अल्प विराम दिया हुआ है, इसका मतलब है कि वहां थोड़ा सा रुकिए। निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से, किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को, यानी कि कीड़े जो उस छिद्र में होंगे, खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है, राइट? अब आप देखिए कि फिर आप ऑप्शन पढ़ते हैं। मत्स्यन मार्जार, ब्रैकेट में है फिशिंग कैट, ओरेंगुटेन, उद बिलाव और स्लॉथ बियर। हो सकता है कि इनमें से कुछ जानवरों के बारे में आपने सुना ही न हो, जैसे स्लॉथ बियर, चलिए भालू होता है, स्लॉथ बियर कोई अलग किस्म का भालू है, शायद आपको न मालूम हो। फिशिंग कैट, स्पेशली बिल्ली के बारे में मालूम होगा लेकिन फिशिंग कैट क्या होता है शायद आपको न मालूम हो। हो सकता है कि इस तरह के संकट आए आपके दिमाग में और फिर आपका दिमाग कहेगा कि भाई आपको फिशिंग कैट के बारे में नहीं मालूम, उदबिलाव के व्यवहार के बारे में भी नहीं मालूम है, ओरेंगुटान के बारे में पता नहीं आप कितना जानते हैं, स्लॉथ बियर के साथ भी यही स्थिति है। तो जब आप इन जानवरों के बारे में जानते ही नहीं या किसी एक के बारे में ही नहीं जानते हैं तो इसे हाथ मत लगाइए, ये रिस्की है। आप अपने दिमाग का मूल्यांकन कीजिए, इस प्रश्न को सुनने के बाद आपका दिमाग आपके साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है, तब आप मेरी बातों को ज्यादा अच्छे से आत्मसात कर सकेंगे, ठीक है? लेकिन क्या अब हम आगे बढ़ जाएं? नहीं, हमें फिर अपने दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें जो वो बात कहना चाह रहे हैं वो ये कि कोई एक पेड़ है, ठीक है, या लकड़ी का गट्ठा ही है, यानी कि सूखा हुआ पेड़ है या लकड़ी पड़ी हुई है जमीन पर, उसमें कोई एक छेद है और उस छेद में कीड़े हैं, कीड़े मकोड़े। अब उसको उन कीड़ों को खाना है तो कैसे खाए? या तो इंतजार करता रहे कि कीड़े बाहर निकलेंगे तो मैं खा जाऊंगा, यही तरीका हो सकता है, या उसकी जीभ इतनी लंबी हो, उसके ऊंट इस तरह के नुकीले हो चिड़िया जैसी कि उसमें वो अपने मुंह डाल करके उसको खा ले, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। वो कह रहा है कि उसको निकालने के लिए, खुरचने के लिए, अब उसको खुरचना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा वहां से, लकड़ी का औजार बनाता है, यानी कि यहां जो सारा दारोमदार है वो लकड़ी के औजार पर है, ध्यान दीजिए, लकड़ी के औजार पर, यानी कि वो लकड़ी का औजार बनाना जानता है, ये सब कुछ है। तो क्या बिल्ली लकड़ी का औजार बना लेती है? तो आपको लगेगा नहीं, बिल्ली तो नहीं बनाती होगी। क्या भालू बना लेता होगा? तो आपको लगेगा नहीं, भालू को तो कभी हमने लकड़ी का औजार बनाते उनाते हाथ में लकड़ी लेकर के चलते हुए इस तरीके से तो देखा नहीं है। वो जो तमाशे उमाशे दिखाते हैं, लकड़ी पकड़ा देते हैं, दो पैरों पर खड़े होकर वो पकड़ लेता है, वो बात अलग है। उदबिलाव, नहीं उदबिलाव के साथ भी हमने ऐसा नहीं सुना है। अब बात रह गई ओरेंगुटैन पर। अगर आप कभी म्यूजियम गए हो और ओरेंगुटैन अगर आपने देखा हो तो आप इस पर निशान लगा देंगे। ओरेंगुटैन बिल्कुल आदमी जैसा आपको दिखाई देगा लेकिन भया हुआ, काला कलूटा, भालू जैसे उसके शरीर में बाल होंगे लेकिन आदमी की तरह बैठा हुआ होगा, उसके नाक गाल सब आदमी की तरह होंगे, आदमी की तरह थोड़ा बहुत व्यवहार भी करेगा, बकायदे उसके दोनों हाथ फ्री हैं क्योंकि वो बैठ जाता है तो उसके दोनों हाथ फ्री हैं, और ये माना जाता है कि मनुष्य के पहले की जो सीढ़ी रही है वो ओरेंग उटान जैसी रही है। आप गूगल में जाकर के इसका चित्र देख लीजिएगा। इसका मतलब है कि ओरेंग उटान के पास कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग था और उसके दोनों हाथ आजाद थे क्योंकि बड़े आराम से वो बैठा रहता है, बैठा ही रहता है वो, और आप उसे एक बार देख करके थोड़े से डर भी जाएंगे, तो वो औजार बना लेता होगा और इस तरीके से ये जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन होगा। ये बात मैं नहीं बता रहा हूं, ये बात शाश्वत अग्रवाल ने बताई है, मैंने उसे अपने ढंग से आपके सामने एक्सप्लेन किया है, दैट्स ऑल। यानी कि शाश्वत अग्रवाल ने इस तरीके का इस्तेमाल किया प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, और आपको मालूम है कि इससे पहले कुछ प्रश्नों को मैंने इसी पैटर्न पर सॉल्व करके आपके सामने रखा था। आपको शायद वो मधुमक्खी वाला याद हो कि किस तरीके से वो अपने दोस्तों को मित्रों को सूचना देता है कि इधर आ जाओ, यहां अनाज का भंडार है, ये है वो है। तो दोस्तों आप अपने दिमाग पर विश्वास कीजिए। चलिए यूपीएससी पर आपका कितना विश्वास है नहीं है छोड़िए, आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपने दिमाग के ऊपर विश्वास कीजिए। ये प्रकृति की बहुत अद्भुत देन है जो हम सबके साथ है, बशर्ते कि हम इसका सही सही इस्तेमाल करना जाने, और सही इस्तेमाल करना तभी जान सकेंगे जब हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे। यानी कि प्रैक्टिस से ही ये सारी बातें सिद्ध हो पाएंगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आज इस विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं। इन्हीं में से एक मित्र हैं महेंद्र चावड़ा जोधपुर से। महेंद्र जी आपका बहुत बहुत आभार। और अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।